एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने सही मायने में सोचने के हमारे तरीके को ही बदल दिया। इमैनुअल कांट।
जी, इमैनुअल कांट।
18वीं सदी के ये प्रशियाई दार्शनिक, मतलब जर्मन ही कहेंगे, आधुनिक सोच की बुनियाद रखने वालों में से एक।
बिल्कुल, एक बहुत बड़ा नाम।
उनका जीवन काल, मतलब 1724 से 1804, यूरोप के प्रबोधन काल एनलाइटनमेंट के साथ साथ चला।
हाँ, वो बड़ा दिलचस्प दौर था।
बिल्कुल, जब तर्क और विज्ञान पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठा रहे थे। तो आज हम कांट के जीवन और उनके उन विचारों की गहराई में जाएंगे जिन्होंने ज्ञान, नैतिकता और तर्क, इन सब की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया।
और ये समझना जरूरी है कि वो आज भी क्यों इतने प्रासंगिक हैं। हाँ, ये सिर्फ कोई पुरानी अकादमिक बात नहीं है। अच्छा, तो उस वक्त का माहौल कैसा था? प्रबोधन काल, आपने कहा दिलचस्प था।
हाँ, देखिए, एक तरफ तो लाइबनिट्ज जैसे तर्कवादी थे। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान सिर्फ तर्क से आता है, मतलब हमारे अंदर कुछ जन्मजात विचार होते हैं।
अच्छा।
और दूसरी तरफ थे लॉक और ह्यूम जैसे अनुभववादी। वो कहते थे, नहीं जी, ज्ञान तो सिर्फ हमारी इंद्रियों के अनुभव से ही आता है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं।
तो ये दो खेमे थे, तर्क वाले और अनुभव वाले।
बिल्कुल, और इनमें बहस चलती रहती थी।
और इसी माहौल में कांट आते हैं। मैंने सुना है डेविड ह्यूम के विचारों ने उन पर बहुत गहरा असर डाला था।
जी हाँ, बहुत ज्यादा।
ऐसा क्या था ह्यूम के संदेहवाद में कि कांट मतलब एकदम से चौंक गए?
देखिए, ह्यूम ने ना खासकर कारण और प्रभाव, जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, उस पर बड़ा गहरा सवाल उठाया।
अच्छा।
कैसे? हम आमतौर पर मानते हैं कि अगर ए होता है तो बी होता है, मतलब ए कारण है, बी प्रभाव, और ये कनेक्शन पक्का है। हाँ बिल्कुल।
ह्यूम ने कहा, हम असल में सिर्फ ए को होते हुए देखते हैं और फिर बी को होते हुए देखते हैं बार बार, लेकिन उनके बीच कोई जरूरी पक्का कनेक्शन है यह हम दावे से नहीं कह सकते, हम बस आदत से मान लेते हैं।
अरे ये तो।
हाँ, और कांट ने खुद माना कि ह्यूम ने उन्हें उनकी वैचारिक जड़ता, मतलब डॉग्मेटिक स्लंबर से जगाया।
तो इस बात ने कांट को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा।
बिल्कुल, सोचने पर मजबूर किया कि भाई अगर ह्यूम सही है, अगर अनुभव ही सब कुछ है और उसमें कोई निश्चितता नहीं है, तो फिर विज्ञान कैसे संभव है? ज्ञान की निश्चितता कैसे आएगी? गणित कैसे काम करता है?
सही कहा, ये तो बड़ी दुविधा हो गई।
जी,
तो क्या कांट ने एक तरह से इन दोनों रास्तों, तर्कवाद और अनुभववाद के बीच कोई पुल बनाने की कोशिश की?
आप कह सकती हैं, पर वो सिर्फ पुल नहीं बना रहे थे, वो तो एक तरह से पूरी जमीन ही बदल रहे थे। यहीं से उनकी वो मशहूर कोपरनिकन क्रांति शुरू होती है दर्शन में।
कोपरनिकन क्रांति?
हाँ।
जैसे कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, ना कि सूरज पृथ्वी के।
बिल्कुल वही, उसी तरह कांट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारा ज्ञान बाहरी दुनिया के हिसाब से ढलता है,
तो फिर,
बल्कि हमारी समझ, हमारा दिमाग ही बाहरी दुनिया को एक आकार देता है, उसे समझने लायक बनाता है। मतलब वस्तुएं हमारे ज्ञान के अनुरूप होती हैं, ना कि हमारा ज्ञान वस्तुओं के।
ये तो पूरा नजरिया ही पलट दिया।
हाँ बिल्कुल।
इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो असल में है, बल्कि वैसी है जैसी हम उसे समझ पाते
हैं। नहीं, ऐसा ही। कांट ने कहा कि हमारा दिमाग कोई खाली स्लेट या कैमरा नहीं है जो बस बाहर की तस्वीरें लेता है।
तो फिर क्या है?
उनके अनुसार हमारे दिमाग में पहले से ही कुछ संरचनाएं हैं, कुछ खांचे हैं, कैटेगरीज, जैसे कि स्थान, समय, कारणता, यूनिटी।
अच्छा, ये पहले से हमारे दिमाग में है, जन्म से?
हाँ, ये अनुभव से पहले हैं, एप्रायरी हैं। तो जब हमारी इंद्रियां बाहर से कच्चा डेटा, मतलब सेंसेशंस लाती हैं, तो दिमाग इन खांचों का इस्तेमाल करके उसे व्यवस्थित करता है, उसे एक मतलब देता है, और इसी व्यवस्थित रूप को हम अनुभव, एक्सपीरियंस कहते हैं।
बापरे, तो इसका मतलब जो असली दुनिया है जैसी वो अपने आप में है, उसे हम कभी जान ही नहीं सकते?
कांट के हिसाब से नहीं। उन्होंने इसे कहा नोमेना, वस्तु स्वतः, थिंक इन इटसेल्फ। हम उसे नहीं जान सकते।
तो हम जानते क्या हैं?
हम केवल फिनोमेना को जान सकते हैं, यानी चीजें जैसी वे हमें प्रतीत होती हैं।
हाँ।
हमारे दिमाग द्वारा संरक्षित होने का बाद।
अच्छा, तो ये एक तरह से ज्ञान की सीमाएं तय कर दी उन्होंने।
बिल्कुल, उन्होंने कहा हम दुनिया को जान सकते हैं, लेकिन केवल अपनी मानवीय समझ के चश्मे से। ये एक बहुत बड़ा कदम था, इसने मेटाफिजिक्स पर भी सवाल खड़े कर दिए।
ये तो हुई ज्ञान की बात, अब जरा नैतिकता पर आते हैं, क्या उनके विचार इस क्षेत्र में भी इतने ही क्रांतिकारी थे?
हाँ जी, निश्चित रूप से। नैतिकता के क्षेत्र में उन्होंने एक पूरी नई दिशा दी। उन्होंने कर्तव्य शास्त्र यानी डियोन्टोलॉजी की नींव रखी।
डियोन्टोलॉजी, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि कोई काम सही है या गलत, ये उसके नतीजों कॉन्सिक्वेंसेस पे निर्भर नहीं करता।
तो फिर किस पर करता है?
ये उस काम के पीछे की नीयत, इंटेंशन और सिद्धांत, प्रिंसिपल पर निर्भर करता है। क्या आप सही काम सही कारण से कर रहे हैं? क्या आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? भावनाएं या फायदे नुकसान नैतिकता का आधार नहीं हो सकते।
केवल तर्क।
हाँ, केवल तर्क, शुद्ध व्यावहारिक तर्क।
और यहीं पर उनका वो सबसे मशहूर सिद्धांत आता है, निर्वपात कर्तव्यादेश,
कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। ये सुनने में बड़ा भारी लगता है।
हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है पर आइडिया समझने लायक है।
इसे सरल शब्दों में कैसे समझें?
इसका जो सबसे पहला और मूल रूप है वो कहता है, केवल उसी सिद्धांत यानी मैक्सिम के अनुसार काम करो जिसे तुम चाह सको कि वो एक सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ बन जाए। अच्छा, मतलब कोई भी काम करने से पहले ये सोचो कि अगर दुनिया में हर कोई हर समय यही काम करने लगे तो क्या ये ठीक रहेगा? क्या ऐसी दुनिया संभव होगी जिसमें सब ऐसा ही करें?
बिल्कुल सही। अगर जवाब हाँ है तो वो काम नैतिक रूप से सही है, अगर नहीं तो गलत है।
उदाहरण के लिए जैसे झूठ बोलना।
हाँ, अगर हम झूठ बोलने को एक सार्वभौमिक नियम बना दें तो क्या होगा? कोई किसी की बात पर भरोसा ही नहीं करेगा,
संवाद ही खत्म हो जाएगा।
जी, इसलिए कांट के अनुसार झूठ बोलना हमेशा गलत है, चाहे नतीजा कुछ भी हो।
हमेशा मतलब किसी की जान बचाने के लिए भी नहीं?
कांट की कठोर व्याख्या के अनुसार हाँ, हमेशा गलत है। यहीं पर उनकी आलोचना भी होती है।
अच्छा, इसी सिद्धांत का एक और रूप भी है शायद।
जी हाँ, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है, हर इंसान के साथ, चाहे वो आप खुद हो या कोई और, हमेशा एक लक्ष्य की तरह व्यवहार करो, कभी भी सिर्फ एक साधन की तरह नहीं।
इसका क्या मतलब हुआ, साधन की तरह नहीं?
मतलब किसी भी इंसान को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल मत करो। हर व्यक्ति अपने आप में मूल्यवान है, उसका अपना सम्मान है, अपनी गरिमा है, वो किसी और के लक्ष्य का सिर्फ एक औजार नहीं है।
वाह, ये बात तो, ये तो आज के समय में बहुत बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, खासकर जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं।
बिल्कुल, कांट का ये जो मानवीय गरिमा पर जोर है वो आधुनिक मानवाधिकारों की सोच का एक तरह से दार्शनिक आधार है, कि हर तर्कशील प्राणी, रैशनल बीइंग, अपने आप में मूल्यवान है।
ये तो उनके विचारों की गहराई हुई। उनके जीवन के बारे में भी कुछ बताइए। सुना है उनका जीवन बड़ा नियमित, एकदम बंधा बंधाया सा था।
हाँ, ये किस्सा बड़ा मशहूर है। वो कोनिग्सबर्ग शहर में पैदा हुए, वहीं पढ़ाया और वहीं उनकी मृत्यु हुई। कहते हैं वो कभी उस शहर से 60 मील से ज्यादा दूर गए ही नहीं।
सच में, पूरी जिंदगी एक ही शहर में?
हाँ, और उनका जीवन इतना अनुशासित था, इतना नियमित, कि लोग उनकी दोपहर की 3:30 बजे की सैर से अपनी घड़ियां मिलाते थे।
क्या बात है, रोज ठीक 3:30 बजे?
रोज। उन्हें मजाक में क्लॉकवर्क प्रोफेसर भी कहा जाता था। कहते हैं सिर्फ एक बार वो अपनी सैर पे टाइम से नहीं निकले थे।
क्यों, क्या हुआ था?
वो रूसो की किताब एमिल पढ़ने में इतने खो गए थे कि समय का ध्यान ही नहीं रहा।
तो विचारक आखिर विचारक ठहरा।
बिल्कुल।
लेकिन इस नियमितता और थोड़ी सूखी सी लगने वाली जिंदगी के पीछे एक बहुत गहरा, बहुत मौलिक विचारक था।
और दिलचस्प बात यह भी है कि उन्हें अकादमिक दुनिया में बड़ी पहचान काफी देर से मिली है ना।
हाँ, ये भी सही है। उनकी सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, शुद्ध तर्क बुद्धि की मीमांसा, 1781 में छपी। तब वो 57 साल के थे।
57 साल, तब तक वो क्या कर रहे थे?
वो प्रोफेसर थे, पढ़ा रहे थे, लिख भी रहे थे, लेकिन ये किताब आने से पहले का जो दशक था उसे अक्सर उनका मौन दशक यानी साइलेंट डेकेड कहा जाता है, जब वो ह्यूम को पढ़ने के बाद अपने इन क्रांतिकारी विचारों को विकसित कर रहे थे। अच्छा, तो ये किताब जब आई, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, इसका क्या असर हुआ?
इसने तो दर्शन की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। इसमें उन्होंने ज्ञान की संभावना, उसकी सीमाओं और, जैसा हमने बात की, मन की संरचना करने वाली भूमिका का बहुत गहरा, बहुत जटिल विश्लेषण किया।
जटिल मतलब मुश्किल थी पढ़ने में?
बहुत मुश्किल। कहते हैं उस जमाने के पढ़े लिखे लोग भी शिकायत करते थे कि समझ नहीं आ रही।
इतनी मुश्किल थी कि कांट को बाद में एक तरह की गाइडबुक लिखनी पड़ी जिसे प्रोलिगोमेना कहते हैं, ताकि लोग उनकी पहली क्रिटिक का मुख्य आइडिया समझ सकें।
अच्छा, तो ये पहली क्रिटिक थी, इसके बाद और भी आई?
हाँ, उनका ये पूरा प्रोजेक्ट 3 क्रिटिक्स या मीमांसाओं का था। एक तरह से मानव अनुभव के तीन मुख्य पहलू।
तीन पहलू,
हाँ।
कौन कौन से?
पहली, शुद्ध तर्क बुद्धि की मीमांसा, ज्ञान पर थी, हम क्या जान सकते हैं। दूसरी, व्यावहारिक तर्क बुद्धि की मीमांसा, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन 1788, वो नैतिकता, मोरालिटी और इच्छा शक्ति, विल पर केंद्रित थी, हमें क्या करना चाहिए।
और तीसरी? तीसरी थी निर्णय शक्ति की मीमांसा, क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790। ये सौंदर्य, ब्यूटी, कला और प्रकृति में उद्देश्य के अनुभव पर थी, हम क्या महसूस करते हैं या किस चीज की उम्मीद कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती हैं।
जानना, करना और महसूस करना, ज्ञान, नैतिकता और सौंदर्य, वाह। तो उन्होंने इन सब पर तर्क की एक मजबूत नींव रखने की कोशिश की।
जी बिल्कुल, तर्क उनके दर्शन का केंद्र बिंदु था।
अगर हम उनके समय के दूसरे विचारकों से तुलना करें, जैसे उपयोगितावादी थे बेंथम वगैरह, उनसे कांट कैसे अलग थे?
नैतिकता को लेकर सबसे बड़ा अंतर था। जैसा हमने पहले बात की, कांट के लिए नियत, कर्तव्य और सार्वभौमिक सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण थे।
हाँ।
वहीं बेंथम जैसे उपयोगितावादी मानते थे कि किसी काम की अच्छाई या बुराई उसके नतीजे से तय होती है। क्या वो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी पैदा कर रहा है?
अच्छा, तो कांट के लिए नतीजा मायने नहीं रखता था, अगर नियत सही है और सिद्धांत का पालन हो रहा है।
बिल्कुल, नतीजा चाहे जो हो, अगर आपने सही सिद्धांत के तहत अपना कर्तव्य निभाया है तो आपका काम नैतिक है। ये उपयोगितावाद से एकदम अलग नजरिया है।
ये तो बिल्कुल साफ है कि कांट का असर बहुत गहरा और दूर तक गया होगा। आज के समय में उनकी विरासत को हम कैसे देखते हैं?
उनकी विरासत बहुत बहुत विशाल है। शायद ही कोई आधुनिक पश्चिमी दार्शनिक हो जो कांट से प्रभावित ना हुआ हो या जिसे उनके विचारों का जवाब न देना पड़ा हो।
अच्छा।
हाँ, उनके ठीक बाद हेगेल, फिक्टे, शेलिंग जैसे जर्मन आदर्शवादी आए, वो तो सीधे तौर पर कांट से ही निकले थे। फिर बाद में भी फिनोमिनोलॉजी हो, अस्तित्ववाद हो, एनालिटिक फिलोसफी हो, सब पर कांट का असर दिखता है।
और दर्शन के दायरे से बाहर भी, समाज पर, राजनीति पर।
जी हाँ, जैसा हमने मानव अधिकारों की बात की, उनका वो विचार कि हर इंसान अपने आप में एक लक्ष्य है, साधन नहीं, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। फिर उनका एक निबंध है शाश्वत शांति पर, परपेचुअल पीस पर।
हाँ, सुना है इसके बारे में।
राष्ट्रों के बीच स्थायी शांति कायम करने के लिए एक तरह के गणराज्यों के संघ का प्रस्ताव रखा था। इसे आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों की सोच का एक शुरुआती बिंदु माना जाता है।
कमाल है, मतलब उनके विचार आज भी जिंदा है।
बिल्कुल, आज भी आप देखिए, कानून में, मेडिकल एथिक्स में, राजनीति में, यहां तक कि कॉग्निटिव साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर बहसों में भी कांट के विचारों का हवाला दिया जाता है।
उनके कुछ कथन भी बहुत मशहूर हैं। वो एक तो आपने बताया था, सेपरे ओडे।
हाँ, सेपरे ओडे, अपने विवेक का प्रयोग करने का साहस रखो, यही प्रबोधन का आदर्श वाक्य है। ये उनके निबंध प्रबोधन क्या है, व्हाट इज एनलाइटनमेंट से है। ये एक तरह से आह्वान है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, किसी और के भरोसे मत रहो, स्वतंत्र सोचो।
ये तो आज भी उतना ही जरूरी है,
शायद पहले से भी ज्यादा।
और एक और कथन है उनका, वो तारों वाले आकाश और नैतिक नियम वाला, वो मुझे बहुत पसंद है।
हाँ, वो बहुत खूबसूरत है। दो चीजें मन को हमेशा नए और बढ़ते विस्मय और श्रद्धा से भर देती हैं। जितनी ज्यादा और लगातार हम उन पर विचार करते हैं, मेरे ऊपर तारों भरा आकाश और मेरे भीतर नैतिक नियम।
कहाँ से है ये?
ये व्यवहारिक तर्क बुद्धि की मीमांसा के निष्कर्ष से है। ये दिखाता है कि कांट भारी दुनिया के विशाल नियमबद्ध ब्रह्मांड, तारों भरा आकाश और इंसान के अंदर की जो नैतिक चेतना है, जो सही गलत का एहसास है, नैतिक नियम, दोनों को कितनी गहराई से महसूस करते थे और दोनों के प्रति विस्मित थे।
अद्भुत। लेकिन इतने महान विचारक होने के बावजूद यकीनन उनकी आलोचनाएं भी हुई होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबने बस तारीफ ही की हो।
नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बड़े विचारक की तरह कांट की भी बहुत आलोचनाएं हुई हैं और होती रहती हैं।
जैसे कि
उनके ठीक बाद आने वाले हेगल जैसे दार्शनिकों ने उनके नूमिना और फिनोमिना के विभाजन की आलोचना की, कहा कि यह दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है, एक जैसे हम जान सकते हैं और एक जैसे कभी नहीं जान सकते, ये ठीक नहीं है।
और नैतिकता वाले विचारों की, वो झूठ बोलने वाली बात पर?
हाँ, उपयोगितावादियों और कई और लोगों ने कहा कि उनका नैतिकता का सिद्धांत बहुत ज्यादा कठोर, रिजिड और अव्यवहारिक है। क्या वाकई किसी की जान बचाने के लिए भी झूठ बोलना हमेशा गलत है? ये वास्तविक जीवन की जटिलताओं को नजरअंदाज करता है।
नीत्शे ने भी शायद कुछ कहा था।
हाँ, नीत्शे ने तो कांट का मजाक ही उड़ाया था। उन्होंने कहा कि कांट का ये जो भीतर का नैतिक नियम है, ये असल में बस ईसाई नैतिकता का ही एक धर्मनिरपेक्ष छुपा हुआ रूप है।
अच्छा, और आजकल कोई आलोचना?
हाँ, हाल के दशकों में कुछ विद्वानों ने उनके मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी पर लिखे गए कुछ लेखों पर ध्यान दिलाया है, जिनमें नस्लीय पदानुक्रम, रेशियल हायरार्की और लिंग भेद, सेक्सिज्म जैसे विचार मिलते हैं।
ओह, ये तो उनके सार्वभौमिक नैतिक दर्शन से मेल नहीं खाता।
बिल्कुल, ये एक तनाव पैदा करता है। ये दिखाता है कि महान विचारक भी अपने समय की पूर्वाग्रहों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाते। साथ ही कुछ नारीवादी दार्शनिकों ने आलोचना की है कि कांट तर्क, रीजन को भावना, इमोशन और केयर पर जरूरत से ज्यादा तरजीह देते हैं। और हाँ, उनके लिखने की शैली की जटिलता की शिकायत तो हमेशा से रही है।
तो ये सब जानने के बाद, अगर हमें कांट के सबसे स्थायी, सबसे महत्वपूर्ण योगदान को एक लाइन में कहना हो, तो वो क्या होगा? वो एक विचार जो आज भी गूंजता है
मेरे ख्याल में, वो है मानवीय स्वायत्तता, ह्यूमन ऑटोनॉमी। ये आइडिया कि हम मनुष्य अपनी समझ और अपनी नैतिकता के नियम खुद बनाते हैं। हम बाहरी सत्ता या प्रकृति के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता हैं।
ये खुद सोचने का साहस, सापेरे आउदे, ये इसी स्वायत्तता से जुड़ती है।
बिल्कुल, यही उनका मूल संदेश है। अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करो, स्वतंत्र बनो।
तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक विचार छोड़ें, कांट से जुड़ा हुआ, जिस पर वो सोच सकें।
जरूर, शायद ये सवाल आज की दुनिया में और भी प्रासंगिक है। कांट ने कहा था कि हर इंसान को हमेशा एक लक्ष्य की तरह देखो, कभी सिर्फ एक साधन की तरह नहीं। तो आज की इस भागती दौड़ती उपभोक्तावादी दुनिया में, जहां अक्सर लोगों को, रिश्तों को, यहां तक कि खुद को भी किसी न किसी फायदे का साधन बना दिया जाता है, वहां इस सिद्धांत पर जीना कितना आसान या कितना मुश्किल है? क्या हम सच में हर व्यक्ति को उसके अपने आप में मूल्यवान मान पाते हैं? इस पर सोचना शायद कांट को आज अपने जीवन में उतारने का एक तरीका हो सकता है।
बहुत गहरा सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है
जी।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।